नीतियों को अपनाया, लेकिन कंस अपने क्रूर स्वभाव से किसी से प्रभावित नहीं हुआ, तो वसुदेव ने वचन दिया कि तुम्हें देवकी से भय तो नहीं है, देवकी के गर्भ से भय है, संतान से भय है, मैं तुम्हें वचन देता हूं। बड़ा होशियारी से कहा है, ये संस्कृत भाषा में इसका अर्थ बड़ा अद्भुत है। वसुदेव कह रहे हैं तुम्हें भय देवकी से नहीं है, तुम्हें इसकी संतान से है, तो मैं इसके सारे संतान आपको दे दूंगा उसके अलावा जिससे आपको भय है। संस्कृत में अर्थ यह निकलता है कि उसके सारे संतान आपको दे दूंगा, लेकिन उसके अलावा जिससे आपको भय है, जिससे भय है वो नहीं दूंगा। ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस श्लोक का भाव बताते हैं कि नहीं तो वसुदेव अपना सत्यवादी था, वचन कैसे तोड़ता। तो उसको छोड़ के जिससे आपको भय है बाकी सब दे दूंगा, लेकिन संस्कृत भाषा ऐसी है कि लग रहा है कि आपको सारे दे दूंगा जिनसे आपको भय है, जिनसे आपको भय है ऐसे दिख रहा है, लेकिन जिससे भय है वो नहीं दूंगा। और कंस राजी हो गया। राजी होगा का मतलब देवकी को बालों से छोड़ दिया और मारा नहीं, लेकिन उसके बाद रथ नहीं चलाया, चला गया घर। फिर वसुदेव देवकी को लेके अपने जो महल था वहां आ गए। तो अब भूमि का है तो अथ शब्द है आज के श्लोक में पहला। अथ का मतलब विषय बदल रहा है, अथ आने का मतलब उसके बाद, मतलब विषय बदल रहा है। अब वो जो विषय था वो पूरा हो गया, तो आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। अथ काल उपावर्ते देवकी सर्व देवता पुत्रान पशुश्वे चाष्टौ कनयाम चैवा अनुवत्सरम्। अथ काल उपावर्ते देवकी सर्व देवता पुत्रान पर्शवस्वे चाष्टौ कन्याम चैवानुवत्सरम्। अथ काल उपावर्ते देवकी सर्व देवता पुत्रान प्रसस्वे चाष्टौ कन्याम चैवानुवत्सरम्। अथ काल उपावर्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान प्रसस्वे चाष्टौ कन्याम चैवानुवत्सरम्। अथ काल उपावर्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान प्रसस्वे चाष्टौ कन्या चैवानुवत्सरम्। अथ काल उपावर्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान प्रसस्वे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम्। अथ काल उपावर्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसस्वै चाष्टौ ग्रियान् देवानवत्सरां वैष्णवी माताजी अध काले उपावृते सर्वदेवता पुत्रान् पशुस्वे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम् अथ का अर्थ अथ कालोपावृते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् पशुस्वे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम् अथ कालोपावृते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् पशुस्वे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम् अथ कालोपावृते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसस्वे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम् अथ का अर्थ होता है इसके बाद, इसका मतलब विषय बदल रहा है। तो पहले विषय चल रहा था कंस और वसुदेव संवाद, अब सुखदेव महाराज कहते हैं अथ उसके बाद काल का मतलब समय और उपावृत। आवृत कहते हैं किसी चीज को ढका हुआ हो, और उपावृत का मतलब अनावृत करना, इसका मतलब समय आने के ऊपर, जब समय पक गया, मैच्योर, अंग्रेजी में प्रभुपाद ने लिखा है व्हेन टाइम इज मैच्योर। तो आप क्योंकि भाषा जानते हैं, आवृत का मतलब ढकना, उपावृत उप को मतलब ऊपर उठाना, टाइम को मतलब जब समय आया, समय आने के ऊपर, समय आने के ऊपर क्या हुआ, देवकी, कैसी देवकी की विशेषता क्या है, सर्वदेवता। देवकी सर्वदेवता, श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य केवल सर्वदेवता शब्द के ऊपर है, पूरा तात्पर्य एक ही शब्द के ऊपर है, सर्वदेवता। तो यहां सर्वदेवता का प्रभुपाद ने शब्द अर्थ में लिखा है सारे देवता और परम पुरुष भगवान, दोनों अर्थ लिखे हैं। वैसे देवता शब्द का अर्थ है देने वाला, देवता शब्द का अर्थ है जो देता है, देव देना, देवता देने वाला। तो भगवान देने वाले हैं सबको, और फिर भगवान के नियुक्त देवता भी देते रहते हैं। पुत्रान बहुवचन में पुत्रों को परसस्वे जन्म दिया, कितने, च अष्टौ, आठ पुत्रों को जन्म दिया। कन्याम च, और एक कन्या को, ये कन्या श्रील प्रभुपाद जी शब्द अर्थ में लिखते हैं सुभद्रा। प्राय लोग पूछते हैं सुभद्रा की मां कौन है, तो देवकी की कन्या है सुभद्रा। जब आठवां देवकी का दिव्य भगवान का प्रकट्य हुआ, गर्भ से तो नहीं हुआ लेकिन चतुर्भुज रूप में जब प्रकट हुआ, और उसने आदेश दिया कि मुझे गोकुल ले चलो, और वहां से यशोदा की मेरी अनुजा छोटी बहन है कन्या, उसको ले आओ, तो उस कन्या को ले आए वसुदेव, और कन्या देवकी के हाथ में दी, और कंस ने देवकी से कन्या को जब मांगा तो देवकी ने छह पहले पुत्रों के लिए कभी उसको बचाने की प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन आज उस कन्या को बचाने के लिए बहुत प्रार्थना की, हाथ जोड़ के कहा भैया कंस देखो ये बच्ची है, कोई लड़का है नहीं जो तुम्हें मारेगा, ये मेरा अंतिम गर्भ है, अब तुम्हारा क्या बिगड़ने वाला है, तुम इसको छोड़ दो, ये बड़ी होगी तो तुम्हारे पुत्र से विवाह दूंगी। लेकिन कंस ने जबरदस्ती उनके हाथ से कन्या को ले लिया, तो कन्या ने देखा कि माँ मुझसे इतना स्नेह करती है, वही तो योग माया थी। उसने कहा इतना मेरे से देवक की स्नेह करती है तो इसकी पुत्री बनना ही चाहिए ताकि ये माँ मेरा सुख ले ले। तो एक कन्या को जन्म दिया देवकी ने, और फिर शब्द लिखा है अनु चैव, चैव का मतलब एक कन्या को जन्म भी दिया, अनु अनु का मतलब अनु वत्सरम, वत्सर कहते हैं साल को, जो एक साल है वो हम कहते हैं वर्ष, वो वत्सर शब्द है, वत्सर वो हो गया वर्ष, हमारी सामान्य भाषा में वर्ष शब्द हो गया वत्सर से। सो वत्सर अनु वत्सर मतलब हर साल के बाद साल, तो प्रायः 10 महीने में जन्म होता है, तो हर वर्ष के बाद देवकी ने समय आने पर 8 पुत्रों को जन्म दिया और एक कन्या को जन्म दिया। लेकिन उनमें से एक पुत्र जो था वो सर्व देवता था, असल में इसका अर्थ ये होगा। वैसे ये भी नहीं है, देखा जाए तो पहले 6 गर्भ जो देवकी के हैं, 6 पुत्र जो पहले हैं, उनको तो 6 गर्भ असुर कहते हैं। आप सबको इसकी कथा ज्ञात होगी 6 गर्भों की। ये 6 गर्भ मरीचि के पुत्र 6 ब्रह्मा जी के ऊपर आलोचना करने के कारण देवता पद से गिर के असुर योनि में आए। फिर हिरण्याकश के यहां पुत्र बने, लेकिन तपस्या कर रहे थे अलग, तो हिरण्याकश ने श्राप दिया कि तुम अपने पिता के हाथों मारे जाओगे। तो ये कालनेमी के पुत्र थे और कालनेमी कंस के रूप में आया और इसने अपने ही 6 पुत्रों को मारा। तो ये 6 पुत्र असुर थे, कालनेमी के पुत्र थे, कंस कालनेमी का ही अवतार था, अवतार का क्या, कालनेमी ही दोबारा कंस के रूप में आया था और उसने अपने पुत्रों को मारा क्योंकि ये शराब था। और भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि मरीचि मन का प्रतीक है और मन के 6 दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। जब तक इन्हों का दमन नहीं होगा तब तक भगवान का प्रकट्य नहीं होगा। देवकी भक्ति स्वरूप है, कंस भय है, तो भय से भक्ति के अंदर से जब तक ये 6 दोष का निवारण होता है तब भगवान का प्रकट्य होता है। ये भावार्थ भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। इन 6 बच्चों की कथा फिर दसम स्कंद में आती है, उत्तर अर्ध में आती है, जब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण बलराम माता देवकी को प्रणाम करने गए तो एक दिन उन्होंने स्नेह से पूछा कि बेटा आपके मरे हुए गुरु के पुत्र को बहुत समय के बाद आपने वापस ला के दिया, हमारे 6 पुत्र कंस ने दूध पिलाने से पहले मार दिए, मैं उनको देखना चाहती हूं। तो कृष्ण बलराम सूत्र लोक चले गए बलि महाराज के पास, बलि महाराज ने उनका स्वागत किया, तब कहा क्या सेवा करें, बोला ये 6 पुत्र मेरी मां देखना चाहती है। तो सूतर लोक से बलि महाराज से वो 6 पुत्र कृष्ण बलराम वापस द्वारका लाए और मां देवकी के हृदय में वात्सल्य उमंड पड़ा, उसने उनको वो दूध पिलाया जो भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद था, ये असुर जूनी से मुक्त होके वापस देव योनि में गए। तो ये 6 बच्चों का थी ये कहानी है, 8 में से एक बच्चा बलराम जी वो आया तो सही, लेकिन क्यों आया, बोला भगवान के लिए स्थान बनाने के लिए आया, जैसे आसन पहले रखा जाता है फिर व्यक्ति आके उसके ऊपर बैठता है। तो देवकी के गर्भ में बलराम जी भगवान के लिए आसन बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए आए, फिर देवकी, फिर भगवान ने योग माया को कहा कि ये नित्य रोहिणी का सुत है, इसको यहां से खींच के रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो। तो कंस की दृष्टि से 7वां गर्भपात हो गया, लेकिन असल में बलराम जी रोहिणी के गर्भ में स्थान अंतर हो गए योग माया के द्वारा भगवान के आदेश से। और आठवें पुत्र के रूप में भगवान साक्षात श्री कृष्ण वसुदेव कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। ये रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में दूसरे चरण में हुए तो वह से नाम हुआ वसुदेव कृष्ण। और उसके बाद एक वर्ष के बाद एक कन्या का जन्म हुआ। इसका अर्थ ये, जब कंस के कारागृह से वसुदेव छूट गया तो अपने घर में जन्म हुआ सुभद्रा का। तो ये इस श्लोक का अनुवाद है, ठीक है। अब श्लोक के अनुवाद को पढ़ते हैं। तत्पश्चात प्रतिवर्ष अनुवत्सराम, समय आने पर काल उपावृत, ईश्वर तथा अन्य देवताओं की माता सर्वदेवता देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया। इस तरह एक के बाद एक उनके आठ पुत्र तथा सुभद्रा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई, ठीक है। श्लोक सब समझ में आ रहा है, लिखा पड़ा, ये लिखा पड़ा है सबको, ऐसे अपने आप समझ में आ रहा है इसका अर्थ। तो अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। गुरु को कभी कभी सर्वदेवमयो गुरु कहकर महिमा मंडित किया जाता है। अब इस श्लोक की जो कोटेशन की है, देख लो आपके पास है पुस्तक किसी के पास, या ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख लो 11/7/27 में ये श्लोक नहीं है, 17 है, 17 दिया है, यहां 7 दिया है, 11/7 नहीं, 11/17/27 है। 17 किसने दिया है? वेदाबेस में होगा, लेकिन इसमें ये जो है गीता बेस में 7 है और पुस्तक में 7 है, यहां भी 7 है ना, तो ये 7 नहीं है, 17 है, 11/17 है, 7 नहीं है। और ये श्लोक कौन सा है? आचार्यम माम विज्ञान, उसका लास्ट लाइन है सर्वदेवमयो गुरु। तो सर्वदेवमयो गुरु का मतलब क्या है? वैसे मयो का मतलब के जैसे करुणामयी राधे, करुणा की भरी हुई है। तो क्या चीज देवता करते हैं जो गुरु के अंदर है? सर्वदेव मयो गुरु, जो सब देवता दे सकते हैं वो गुरु दे सकता है। भाई देवता का काम देना है ना, लेकिन सब देवता जो दे सकते हैं, जो नहीं दे सकते हैं वो भी गुरु दे सकते हैं। वो क्या दे सकता है? भगवान की कृपा, भगवान की कृपा की मूर्ति है गुरु। सर्वदेवमयो गुरु मतलब सब कुछ गुरु से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आचार्य मेरे समान है। भाई देवताओं को भी तो मैं ही देता हूं, तब वो देते हैं ना, ये तो भगवत गीता में है ना, आप देवता की पूजा करते हैं उनके लिए श्रद्धा मैं देता हूं आपको, फिर आप पूजा करते हैं जो देवता आपको फल देता है वो भी मैं उनको प्रेरणा देता हूं तब देते हैं। तो देवता की पूजा की हमारे को श्रद्धा भी भगवान देते हैं, और देवता जो फल देता है वो भगवान की प्रेरणा से देते हैं। ये कैसे करते हैं? इसका सिद्धांत ये है, आपके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान है ना, देवता तो नहीं है, तो वो भगवान जान लेता है आपके हृदय से कि आप किसकी सेवा करना चाहते हो, तो आपको वो श्रद्धा देता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, फिर देवता को क्या पता कि ये क्या मांग रहा है? देवता के हृदय में परमात्मा तो बैठे हुए ना, तो देवता को कहते हैं ये तुम्हारे पास इसलिए आ रहा है, इसको ये दे दो। तो दोनों का काम भगवान करते हैं। तो सर्वदेवमयो गुरु, गुरु सारे, एक और श्लोक भी इस तरीके से अगर कहें तो जो भक्त होते हैं उनमें सब देवताओं के गुण आ जाते हैं। कौन सा श्लोक है? यस्य सी भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुण ही सुरा, वहां सुरा शब्द का अर्थ देवता नहीं है। भगवान जो देवताओं से पूजित है, देवताओं के गुण आ जाएं ये तो देवता के भक्त में भी आ जाते हैं, भगवान के गुण अथवा जो देवता उनके शरीर के अंदर रहते हैं वो उनके सेवा में खड़े हो जाते हैं। सर्वदेव गयमयो गुरु का मतलब है कि जितने देवता शरीर में, हमारे सारे शरीर के सब इंद्रियों के ऊपर देवता उनके अधिपति हैं, तो वो सारे गुरु के शरीर में जब होते हैं तो भगवान की सेवा के कार्य में लग जाते हैं। कैसे? जैसे भगवान ने अवतार से पहले क्या कहा ब्रह्मा जी को कि सब देवताओं को कहो कि यदुवंश में प्रकट होके और मेरी सेवा में लग जाएं। ऐसे सारे राम अवतार में सारे ही देवता भगवान की सेवा में लगे हैं कि नहीं? हा? सारे के सारे देवता आए हैं कि नहीं? वो ब्रह्मा जी ने कहा मैंने जामवंत को भेरे मेरे पुत्र के रूप में भेज दिया है, तो वायुदेव ने कहा मैं हनुमान जी को भेजता हूं, तो हरेक नल नील ये सब ये देवता है। तो देवता जैसे भगवान की सेवा में लगते हैं ऐसे सारे देवता गुरु के माध्यम से गुरु की सेवा में उसकी सहायता में लगते हैं, उसके लिए कोई बाधा नहीं होती। ये इसका भावार्थ ही है सर्वदेवमय गुरु का। तो सर्वदेवमय गुरु ये एक बात लिखी हुई है शास्त्र में, प्रभुपाद जी कहते हैं। ये बात कहने के बाद प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक गुरु की कृपा से विभिन्न प्रकार के देवताओं को समझा जा सकता है। ये एक और परिभाषा प्रभुपाद जी देते हैं कि प्रमाणिक गुरु की शिक्षा से देवता क्या है ये हम समझ सकते हैं। इसका मतलब सामान्य लोग जब तक प्रमाणिक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो देवता और भगवान के बीच में क्या भेद है वो नहीं समझ पाएंगे। प्रमाणिक गुरु तत्काल ही देवता कौन है, उसकी क्या शक्ति है, उसका अच्छी तरह से परिचय करा देते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य जो है सर्वदेवमय गुरु, इसका तात्पर्य आदि लीला चेतना चरितमृत के पहले अध्याय के अंदर ही श्रील प्रभुपाद ने बड़े विस्तार से किया है। इस श्लोक का विस्तार से प्रभुपाद ने समझाया है पूरे श्लोक को, लेकिन उसमें सर्वदेवमय गुरु के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन आचार्य के ऊपर चर्चा ज्यादा है। यहां सर्वदेवमय गुरु के लिए कि सब देवता, और वहां एक बात ये कही गई है जो हमको समझनी चाहिए कि गुरु साक्षात भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है। इसका अर्थ नहीं है कि साक्षात कृष्ण है। फिर जीव गोस्वामी का उदाहरण देके कहते हैं, कभी कभी कहते हैं शंकर जी और कृष्ण और गुरु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, दो शब्द लिखे हैं वह, गुरु और शिव में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तब जीव गोस्वामी लिखते हैं कि इसका मतलब है कि वो भगवान को बहुत प्रिय है। और यही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, रोज गाते हैं कौन सा श्लोक सुबह मंगल आरती में, साक्षात हरि त्वे न समस्त शास्त्र, साक्षात हरि के समान है गुरु। लेकिन फिर क्या कहते हैं, किंतु। किंतु शब्द आने का मतलब ये ठीक नहीं है, जो नीचे कहा जा रहा है वो ठीक है। संस्कृत में श्लोक में किंतु आ जाए तो जो पहली लाइन है उसका वजन कम हो जाता है और जो पीछे वाली लाइन है वो भारी हो जाती है। तो किंतु के बाद क्या है, प्रभोर प्रिय है, क्योंकि भगवान को प्रिय है, क्योंकि भगवान को प्रिय है। तो गुरु आश्रय, आश्रय विषय है जिसका शरण लेना चाहिए, और भगवान की गुरु आश्रय है और भगवान विषय है जिसकी भक्ति करनी है। तो सर्वदेवमय गुरु कहने के बाद भी गुरु भगवान की सेवा में लगता है, गुरु अपने आप को भगवान कह के नहीं पूजाता है। ये प्रभुपाद के सारे तात्पर्य का सार है। तो देवता में और भगवान में भेद समझा देते हैं गुरु जी। देव शब्द ईश्वर का सूचक है, देव का मतलब भगवान, देव शब्द ईश्वर का सूचक है जो समस्त देवताओं का मूल उद्गम है। अब प्रभुपाद जी भगवत गीता का एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, दसवें अध्याय का, कौन सा? अहम आदिरे देवानाम महर्षि नाम च सर्वेश। पहले पहली लाइन क्या है? दसवें अध्याय का पहला श्लोक क्या लिखा है? 10:2 नमे विधुसुरगणाः, नमे विधुसुरगणाः। न मतलब नहीं, विधु मतलब जानते हैं, सुरगणाः देवता मुझे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? भोग में लगे हुए हैं इसलिए। बोला न महर्षि, महर्षि भी नहीं जानते, तपस्या करते हैं फिर भी नहीं जानते। बोला आखिर क्यों नहीं जानते? अहम आदिर ही देवानाम, क्योंकि मैं उत्पत्ति उनकी मुझसे होती है तो मुझे कैसे जानेंगे भाई? बाप के शादी का बेटे को कैसे पता लगेगा? तो था ही नहीं तो कहां से पता लगेगा भाई? बेटे का जन्म ही नहीं हुआ था तो फिर बाप की शादी का समाचार नहीं दे सकता है। तो देवता पैदा ही भगवान से हुए तो भगवान के बारे में क्या जानेंगे? तो सारे देवताओं का उद्गम स्थान, कोई पूछे कि कहां उद्गम स्थान है देवताओं का, तो विराट रूप के भगवान के शरीर में सारे देवता स्थित है कि नहीं? भगवान के विराट शरीर में कौन सा देवता कहां है विश्व रूप में, वो कहां कहां कौन सा देवता है उसकी वहां पूरी परिचय दिया हुआ है। और वो भगवान प्रेरणा देते हैं तब वो हिलते हैं। तो सारे देवताओं का उद्गम स्थान भगवान है, इसलिए देव शब्द का अर्थ भगवान का सूचक है। क्योंकि देवती ने, देवकी ने तो भगवान को जन्म दिया है ना, देवताओं को जन्म नहीं दिया है। तो देव शब्द का यहां प्रभुपाद जी अर्थ कहते हैं कि देवताओं वो भगवान का सूचक है और सारे देवताओं का भगवान उद्गम स्थान है। भगवान कहते हैं अहम आदिर देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूं। आदि पुरुष भगवान विष्णु अपने विभिन्न रूपों में विस्तार करते हैं। तदैक्षत, ये क्या लाइन है? आदि पुरुष भगवान विष्णु, आदि पुरुष भगवान विष्णु अपने आप को विभाजित करते हैं। तब प्रभुपाद जी अब उपनिषद से एक मंत्र बता रहे हैं और छांदोग्य उपनिषद से क्या कह रहे हैं? तद ऐकस्तः बहुस्याम, तद ऐकस्तः, एक था भगवान, एक था और भगवान ने कहा बहुत बन जाओ और बहुत बन गए। एको बहुस्यात्, एक से अनेक हो गए। आदि पुरुषम भगवान है और सब उससे निकलते हैं। जो कुछ भी दिख रहा है हमको ये भगवान से निकला है, भगवान इनको चला रहे हैं और जब चाहेंगे इन सबको वापस अपने अंदर समा लेंगे, तब भी भगवान रहेंगे। सब निकले भगवान से हैं, चला भगवान रहे हैं और सब समा भी भगवान में जाएंगे। ये परिभाषा है भगवान की। इसलिए कहते हैं भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं। जो चीज कृष्ण से अलावा दिखती है दुनिया में वो माया है। ये दृष्टि जो है ये है महाभागवत की दृष्टि। क्लास वृंदावन में दे रहे थे तो प्रथु प्रभु कह रहे थे, अंत समय प्रभुपाद जी ने कहा कि चर अचर सभी कृष्ण हैं, हरे कृष्ण ना पूरा नहीं किया और प्रभुपाद जी भगवत धाम चले गए। चर अचर कृष्ण से अलावा कुछ नहीं है, सभी भगवान की, या भगवान या भगवान की शक्ति है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है दुनिया में। तो ये दृष्टि जो है ये एक ही अनेक हो गया। अनेक क्या हो गया? तब प्रभुपाद जी उसकी व्याख्या करते हैं, अनेक क्या हो गया? तो यहां दो ही तत्व हैं, या विष्णु तत्व है या जीव तत्व है। इसका अर्थ है या विष्णु तत्व है या शक्ति तत्व है। जीव तत्व तो शक्ति तत्व हुआ ना, तो या तो विष्णु है या पुरुष है या प्रकृति है, दो ही चीजें हैं, तीसरी चीज है ही नहीं। तो वो एक ही भगवान है जो दो चीजों में विभाजित हुए हैं। इसलिए कई बार हमने यहां भी कहा होगा, श्री कृष्ण आदि पुरुष के सीधे तरफ से बलराम जी का प्रकट्य होता है और वाम भाग से राजरानी का प्रकट्य होता है। तो यहां से शक्ति का प्रकट्य होता है वाम भाग से, और सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी का प्रकट्य होता है। और बलराम जी फिर कई विष्णु बनते हैं, और जितने अवतार आते हैं उन विष्णुओं से आते हैं, और चतुर्व्यूह होते हैं, नारायण होते हैं, ये सब बलराम जी होते हैं। और यहां राधा रानी से सारी लक्ष्मियां होती हैं, और छाया के रूप में दुर्गा होती है, और जीव सारे उसका अंश है, क्योंकि शक्ति शक्ति से निकलेगी ना भाई, शक्ति शक्ति से निकलेगी और विष्णु विष्णु तत्व से निकलेगा। तो कृष्ण के दोनों तरफ से, एक तरफ से शक्ति का विस्तार है और एक तरफ से विष्णु तत्व का विस्तार है, तो दो ही तो इसलिए प्रभुपाद जी का आगे का भाव अर्थ ऐसे है कि एक अनेक हो जाओ ऐसे छांदोग्या, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, वे ही अनेक रूपों में विस्तीर्ण हो गए। फिर प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का एक श्लोक कह रहे हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, स्वरूप की विभिन्न कोटियां, भगवान का जो विस्तार है उसकी अलग अलग प्रकार हैं, कौन से हैं, स्वांश तथा विभिन्न अंश कहला, स्वांश मतलब विष्णु तत्व, विभिन्न अंश मतलब जीव तत्व। स्वांश स्वयं भगवान का अंश, वो अवस्वांश है, वो अंश के बाद कला भी होता है, अंश और कला ये होते हैं भगवान के अवतार, या अंश अवतार या कला अवतार, अंश के अंश को कला कहते हैं। अंश अथवा विष्णु तत्व भगवान होते हैं, इसका मतलब जितने भी अवतार हैं विष्णु के वो सब भगवान की संज्ञा उनसे लगेगी। और जो भगवान के अंश हैं, मामाई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, और विभिन्न अंश जीव तत्व होता है जो भगवान के अंश हैं। प्रभुपाद जी कहना क्या चाह रहे हैं, ये सारे तात्पर्य में उनका उद्देश्य क्या है, सर्वदेवमयो देवकी, ये देवमयो देवकी शब्द की परिभाषा में इतने शास्त्रों का प्रभुपाद ने उल्लेख किया है कि इन सब शास्त्रों में एक भगवान अनेक हो जाते हैं। इसका भाव क्या है कि एक श्री कृष्ण भगवान में सब समाये हुए हैं। अब एक प्रभुपाद जी सबको अंतिम एक शिक्षा देने जा रहे हैं, उसको ये है, इसको कहें, इसको कहा जाएगा सही माना में, इसको कहा जाए अवतार के विषय में जो श्रीमद् भागवत का परिभाषा सूत्र है, परिभाषा सूत्र, एते चांश कलाह कृष्ण को, एते चांश कलाह पुंच कृष्ण तो भगवान स्वयं। अभी तक जितने गिनती कराए हैं 22 अवतार, वो या अंश हैं या कला हैं, किसके, कृष्ण के, वो तो ठीक है हम जानते हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है ये हम नहीं जानते। जैसे कोई कहे कि ये ब्राह्मण विद्वान है, तो ब्राह्मण है ये तो हम जानते हैं, लेकिन विद्वान ये विशेषता है ये हम नहीं जानते। एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण विद्वान है, तो विद्वान तो ये सब कृष्ण, ये अवतार हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है ये जानना मुश्किल। तो ये जो परिभाषा सूत्र है भागवत का, इसको कहते हैं संबंध तत्व, संबंध तत्व। संबंध तत्व का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण जिससे हमारा संबंध होना है, वो आदि पुरुष भगवान स्वयं भगवान है, बाकी सब उसके अवतार हैं या अंश हैं या कला है, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, हमारा संबंध उसे, ये संबंध तत्व है। और उससे हमारा संबंध स्थापित कैसे करें, वो है भक्ति, अभिधेय तत्व। और वो है भक्ति रसामृत सिंधु का परिभाष सूत्र, अन्य अभिलाषिता शून्यम जन्म कर्माद ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूल नानो शीलनम भक्तिरोत्तम। ये परिभाष, ये है अभिधेय तत्व, ये अभिधेय तत्व है कि भगवान से संबंध कैसे स्थापित करें। भक्ति ये है उत्तम, जिससे भगवत प्रेम होगा और इसी से भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। तो ये जितना परिभाषा प्रभुपाद जी ने अभी दिया है, ये संबंध तत्व की अभी परिभाषा है कि श्री कृष्ण क्या है, क्योंकि देवकी के यहां प्रकट हुआ है ना, तो उसको सर्वदेवमयो कहे, कहे क्या कहना चाह रहे हैं, अब इसके ऊपर आते हैं प्रभुपाद जी। भगवान के अंश हैं। यदि हम कृष्ण को भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं तो भगवान के सारे अंश स्वतः पूज जाते हैं। अब भगवान को हम सब अवतारों का उद्गम समझकर, सब देवताओं का उद्गम समझकर, सब जीवों का उद्गम समझकर पूजते हैं तो सारे अपने आप पूजित हो जाते हैं। और तब प्रभुपाद जी भागवत के चौथे स्कंद का 31वां श्लोक, ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, उसका अंतिम लाइन कहते हैं, हाँ क्या है, ये न यो रूपयो न, ये कौन सा है, सर्व अहरणम अच्युत ज्या, सर्व अहरणम अच्युत इज्या, कौन सा श्लोक है ये पूरा, यत तरोर मूले निश्चय न, पेड़ की जड़ में पानी देने से पेड़ हरा भरा होता है, पेट में भोजन डालने से सारे शरीर को शक्ति मिलती है, ऐसे अच्युत की पूजा करने से, अच्युत अहरणम, अहरण मतलब पूजा करना, अच्युत की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। एक अच्युत की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती, तो एक कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। और फिर कहते हैं ये पूरा इतना सारा लिखने की क्या जरूरत थी, आगे ये संबंध तत्व को स्थापित किया है कि कृष्ण सबका उद्गम स्थान है। तो ये जानकारी कि कृष्ण सबका उद्गम स्थान है, एक कृष्ण की पूजा सबको संतुष्ट कर सकती है, ये सिद्धांत। उदाहरण कोई देना हो तब कौन सा उदाहरण देना चाहिए, द्रौपदी के अक्षय पात्र का। एक कृष्ण ने साग का छिलका या चावल का दाना खाया तो 10,000 शिशुओं के साथ दुर्वासा संतुष्ट हो गए ना, तो एक कृष्ण संतुष्ट सारा जगत संतुष्ट, कृष्ण तुष्टे जगत तुष्टे, ये इसका उदाहरण देना है तो ये कथा बतानी चाहिए कि एक भगवान की पूजा करने से सब अपने आप। एक हास्य की बात कथाकार कहते हैं कि जब सुदामा ब्राह्मण कृष्ण के घर गए, कृष्ण ने जब चरण धो के पूजा की तो कृष्ण ने रानियों ने कहा हमको भी पूजा, सिर्फ रुक्मणी को सौभाग्य मिला, तो सब घर से थाली के अंदर पेड़ा लेके और फूल लेके और ब्राह्मण को अर्घ पानी दे रहे हैं, फिर फूल अर्पण कर रहे हैं, फिर पेड़ा दे रहे हैं, तो एक पेड़ा खाया, दो खाया, आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, 10-12 फिर कहा कितने पेड़ा खाएगा, बोला और कितनी है, बोला और तो बाकी 16,108 आ गई, बाकी 16,100, अरे बोला इतने सारे पेड़े कैसे खाए। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम मुझे एक को आशीर्वाद दे, ये सब संतुष्ट हो जाएंगे, मुझे एक को आशीर्वाद दे, हाँ हाँ दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं कि आपकी कीर्ति सदा बनी रहे, आपका परिवार सदा फलता फूलता रहे, बोला सबको आशीर्वाद हो गई। अब कितने सब 16,108 पूजा करने आए तो आशीर्वाद देते देते गला ही सूख गया 8 में, तो एक भगवान को आशीर्वाद ब्राह्मण ने दिया तो सारी रानियां संतुष्ट हो गई। तो ये सारी एक ही शब्द में अच्युत अहरणम, हाँ सर्व अहरणम अच्युत, सर्व अहरणम अच्युत इज्य, इज्य मतलब पूजा करना, सबकी पूजा हो जाती है, दो शब्द है अहरणम और पूज्य, सबकी पूजा हो जाती है एक अच्युत की पूजा करने से। और फिर भगवान, फिर प्रभुपाद को चिंता हो गई कि लोग अच्युत का अर्थ कुछ भी निकाल लेंगे, क्योंकि लोग तो सबको अच्युत कह लेते हैं, तब एकदम कहते हैं अरे नहीं नहीं भगवत गीता में आप बताइए, देखिए कि अर्जुन, देखो भगवत गीता का आरंभ भी अच्युत शब्द से होता है और भगवत गीता की पूर्ण आहुति भी अच्युत शब्द से होती है। अर्जुन कहता है पहले सैन्योर ब्योर रथ स्थाप्य में अच्युत, ये पहला भगवत गीता में अर्जुन का वचन है। और अंत में अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्व प्रसादाद अच्युत, गीता पूरी हो गई। तो गीता शुरू अच्युत शब्द से होती है, गीता की पूर्ण आहुति भी अच्युत शब्द में होती है। तो गीता का उद्देश्य एक अच्युत की ही पूजा करना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने विश्व रूप दिखा दिया और विष्णु का रूप दिखा दिया, दोनों उसी के अंदर समाये हुए हैं, तो और किसी की पूजा करने की जरूरत क्या है? ये दोनों चीजें दिखाई कि नहीं दिखाई भगवत गीता में? जिसने दिखाई उसी एक की पूजा करनी चाहिए ना, फिर और कहीं भटकने की क्या जरूरत है? तो ये सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। तो अच्युत कौन है? बोला कृष्ण, अच्युत कृष्ण का नाम है। अच्युत कृष्ण की पूजा करने से सारे देवताओं की स्वतः पूजा हो जाती है, तब न तो विष्णु तत्व न ही जीव तत्व को अलग अलग पूजने की आवश्यकता रह जाती है। बहुत बड़ी भारी बात कह दी प्रभुपाद ने, एक कृष्ण की पूजा करने के बाद न किसी और विष्णु तत्व की पूजा करने की आवश्यकता है और न ही किसी और जीव तत्व की पूजा करने की आवश्यकता है। विष्णु तत्व की पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं है। जहां भगवान श्री कृष्ण अवतार की भूमिका में ऐसी, ये पहला अध्याय इसमें है या दूसरे अध्याय में है? हाँ वहां शब्द है, अंश भागे न, भक्तानाम अभयंकर, भक्तों को भय से मुक्त करने के लिए पहला शब्द एक और है, भक्तानाम अभयंकर आविशेष अंश भागे न मन अनंक दुमदुबी, पहला शब्द क्या है? भगवान अपि विश्व आत्मा, भगवान अपि विश्व आत्मा, विश्व आत्मा कहते हैं परमात्मा को जो सबके हृदय में है, अपि भगवान जो भगवान का अंश है, भगवान अपि विश्व आत्मा भक्तानाम अभयंकर अपने भक्तों को भय से मुक्त करने वाला है, आविशेष अंश भागे न वसुदेव के मन में अपने सारे अंशों के साथ, कौन से अंशों के साथ? विष्णु तत्वों के साथ, सारे अंशों के साथ प्रकट हुए, अकेले नहीं आए भगवान, भगवान आए तो सारे अवतार भगवान के भगवान में समाये हुए आए, सारे अवतारों को। गर्ग संहिता में तो ऐसे लिखा हुआ है कि बलराम जी सारे जितने लोक हैं उनके सब शेष कटे हुए बलराम जी में प्रवेश हुए, और जितने अवतार हैं वो सारे कृष्ण में प्रवेश हुए, तो कृष्ण सारे अवतारों को साथ में लेकर प्रकट हुए, तो वो अकेले नहीं हुए, अंश भागे ना, उसकी परिभाषा बहुत अच्छी आचार्यों ने की है, केवल अंश भागे ने शब्द के ऊपर, जितने विष्णु अंश है वो सब उसी में समाये हुए थे, एक अंश भागे को, और सारे अंशों को ऐसे समझना हो तो दूसरा एक श्लोक चैतन्य चरितमृत से उद्धृत करना चाहिए, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये पांच ही कृष्ण है। क्या है पांच कृष्ण? भक्त स्वरूप चैतन्य महाप्रभु, भक्तावतारम, भक्तावतारम क्या है? पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूपम, भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप नित्यानंद, भक्त अवतार अद्वैताचार्य, तीनों विष्णु तत्व। फिर क्या है? भक्ताख्यम जिसको भक्त कहा जाया श्रीवास पंडित, और भक्त शक्ति कम गदाधर। तो जीव तत्व में आ गए श्रीवास, शक्ति तत्व में आ गए गदाधर, और विष्णु तत्व में आ गए तीन। तो ये सारे के सारे कृष्ण कृष्ण इन पांच तत्वों में प्रकट हुए। तो ये कृष्ण का परिभाषा है, कृष्ण की परिभाषा। और ये जो श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में, जहां कृष्ण अनुशीलम, वहां कृष्ण की परिभाषा क्या है? कृष्ण कृष्ण के सारे अवतार और कृष्ण के शुद्ध भक्त, और कृष्ण की शक्तियां भी उसी के अंदर आ जाती। तो ये कृष्ण की परिभाषा की जा रही है असल में, कि कृष्ण सर्वदेवमय है। तो देवकी ने किसको जन्म दिया? एक कृष्ण को नहीं, सारे अवतारों को, सारे देवताओं को। इसको दूसरा अगर कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के दामोदर लीला में क्या कहते हैं? ये तुम्हारा पेट क्या है? सारी दुनिया का उद्गम स्थान है। क्या कहते हैं लास्ट श्लोक क्या है? नमस्ते धाम ने धाम ने तो उदार अर्थ विश्वस्य धाम ने, ये सारे विश्व का धाम है, सारा विश्व तो तुम्हारे पेट में समाया हुआ है। यही तो देवकी माता कहती है कि आप छोटे बच्चे, आप ये चार हाथ वाले खड़े हो, लोग कहेंगे कि दुनिया जिसके पेट में समाई है वो मेरे पेट में कैसे समा गया? जिस भगवान के पेट में दुनिया समाई हुई है वो मेरे पेट में कैसे समा गया? इसलिए आप छोटे से बच्चे बन जाइए, सामान्य जैसे बच्चा होता है ऐसे। ये चार हाथ वाला बच्चा ये सबको बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे, इसको ठीक नहीं है। मतलब माँ जैसे आपकी मर्जी, मैं तो बालक के रूप में भी शिशु बन जाता हूँ, जो प्राक मेरा मेरा स्वभाव है, मैं कुछ भी बन सकता हूँ। वैसे भी भगवान की बाल पौंगल और किशोर, कुमार और किशोर, कुमार पौंगल किशोर तीन अवस्थाएं हैं, तो बाल अवस्था की लीला करते हैं भगवान। अब अंतिम लाइन है, तो एक कृष्ण की, अच्युत कृष्ण की पूजा करने से सारे देवताओं की स्वत पूजा हो जाती है, तब न तो विष्णु तत्व न ही जीव तत्व को अलग अलग पूजने की आवश्यकता रहती है। यदि कृष्ण पर ध्यान एकाग्र किया जाए तो हरेक की पूजा हो जाती है। अतएव कृष्ण को जन्म देने के कारण माता देवकी को सर्व देवता कहा गया है। यहां कथा पूरी हुई। क्योंकि इस श्लोक के केवल एक शब्द के ऊपर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया, जबकि हरेक शब्द के ऊपर भी बोला जा सकता है, और जब और श्लोकों में उधर आएगा। यहां सिर्फ सर्वदेवमयो देवकी, देवकी केवल कृष्ण की माता नहीं है, सारे अवतारों की माता है, सारे देवताओं की माता है, सारे जगत की माता है। जगत मंगलम आगे आएगा, देव रूपेण देवकी, देवकी स्वयं ही देव रूप है, दिव्य है, और उसने जो जन्म दिया है जगत जगत के मंगल के लिए दिया है। देवकी के विशेषण बहुत सारे हैं। तो यहां आज के श्लोक और भावार्थ पूरा होता है। किसी का कोई प्रश्न और जिज्ञासा है? समय समाप्त हो रहा है। हाँ प्रभु जी, वो कन्या उधर ही है, इसने सुभद्रा, यहां जो सुभद्रा हम पूजते हैं ये देवकी की पुत्री, वो तो चली गई, फिर पुत्री के रूप में दोबारा आई ये सुभद्रा, नहीं तो कहां से आएगी? ये तो है ना, जिसका फिर अर्जुन के साथ विवाह हुआ, बलराम और कृष्ण की बहन।
तो इनका जन्म बाद में हुआ था, जेल से निकलने के बाद?
ऐसा बाद में, ये अष्ट पुत्रों के बाद में हुआ, ये घर में आने के बाद हुआ, इसका ऐसे होता है, इसका माना है, इसका अर्थ यही निकलता है जी। नहीं, उस लग तो उसके बाद ही घर में हुई, ऐसा उसके बाद छोड़ दिया तब हुआ, इसका जन्म हुआ, इतना ही जन्म हुआ ऐसे इसका, इससे। क्यों कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है सुभद्रा किसकी बेटी है, लेकिन यहां देवकी की है, ये स्पष्ट दिख रहा है, प्रभुपाद ने शब्द अर्थ में लिखा है।
तुझे जो देवकी के पिता का नाम, जो देवकी और कंस को भाई बहन के रूप में क्यों बताया गया?
कजन ब्रदर है, कंस कजन ब्रदर है, देवकी देवक की बेटी है,
कंस के जो कंस, पिता उग्रसेन,
कंस उग्रसेन का बेटा है, और देवकी देवक महाराज की बेटी है, जो उनका भाई है, कंस का कजन, कंस कजन भाई है, सगा भाई नहीं। वैसे कंस है काल नेमी, जो पद्मावती उग्रसेन की पत्नी को छल के और उससे प्रकट हुआ है। कंस की पत्नी का नाम पद्मावती है, वो अमरावती की थी, वो अपने मायके गई हुई थी, वहाँ कालने में आकाश से जाते हुए नीचे उतरा और उग्रसेन का रूप धारण किया और कंस का वहाँ बीज पड़ा। आपका क्या प्रश्न है प्रभु?
हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न थे। एक तो आपने बताया था कि जो भी वस्तु कृष्ण से अलग दिखती है वह माया है, तो जो सृष्टि है वो तो पूरी सारी भगवान की है, तो अलग तो भगवान से कैसे उसको समझेंगे?
आप देखो बाजार में जाते हुए आप समझोगे ये मेरा बेटा है तो ये माया है, आप समझोगे कृष्ण ने मुझे दिया है तो ठीक है, आप समझोगे ये घर मेरा है तो माया है, आप कहोगे ये भगवान का मंदिर है तो ठीक है। जो चीज कृष्ण से अलग समझते हैं वो माया है,
जो पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए वो माया।
मैं और मेरा माया है, जहाँ मैं और माया का विस्तार है वो सब माया है, जहाँ कृष्ण है इसका अर्थ है कि जिसको अपना समझते हो वो माया है, जो कृष्ण का समझते हो वो सही है। हमने आपको माया की परिभाषा पहले बताई थी एक बार, याद है किसी को? माया के दो काम है, असली चीज को ढक देती है और नकली चीज दिखाती है। ये माया का काम है, आवरण आत्मिक और विक्षेप। विक्षेप का मतलब आपको भ्रम में डाल देगी और आवरण आत्मक का मतलब पर्दा ढक देगी। इसका उदाहरण क्या है, जब सिनेमा देखने जाते हैं ना तो अपने सगे संबंधियों के साथ जाते हैं, या बेटे के साथ या पत्नी के साथ या मित्र के साथ, अंदर जाके बैठते हैं तो पहला क्या काम करते हैं, लाइट बंद, जिसके साथ गए थे वो दिखने नहीं आएगा, फिर पर्दे के ऊपर एक फिल्म चालू करते हैं और हम उस फिल्म को अपना मान लेते हैं, हीरो को अपना मान लेते हैं, वो रोता है तो हम रोते हैं, उसको दुख आता है तो हम चिल्लाते हैं, लेकिन जो साथ में आए थे उनको भूल जाते। ऐसे भगवान हमारे साथ आए हैं, हृदय में परमात्मा उसको भूल गए और अज्ञानता की काली वो लाइट बंद हो गई और ये दुनिया के स्क्रीन के ऊपर बड़ा सीन चल रहा है, कोई बेटा है, कोई पत्नी है, कोई पति है, ये सारा ड्रामा है, इसमें असली कुछ नहीं है, असली वो है जो हमारे हृदय में बैठा है, उसको भुला दिया, ये इस सब दुनिया को अपना मान लिया, ये बहुत बड़ा दुनिया का पर्दा है, उसके ऊपर जो चल रहा है ये सब सिनेमा है और ये सब अज्ञानता के कारण चल रही है, और अंदर में असली जो हमारे साथ आया है हमारा मित्र वो हृदय में वो हमको भूल गया, ये है माया का काम, और सारे ही माया में फंसे हुए। असल में सभी रिश्तों को भगवान के संबंध से सोच लो तो कोई समस्या नहीं। प्रभुपाद जी एक शराबी को देख के कहते हैं इतना ये बोतल से प्रेम करते हैं, इतना हम कृष्ण से करें तो जल्दी मिल जाएगा, वहां भी कृष्ण ही दिखाई दे रहा है, वहां भी उस उदाहरण से भी कृष्ण से जोड़ रहे हैं, कहीं भी कोई स्थिति हो कृष्ण से जोड़ के काम करेंगे तो कृष्ण तो हम कृष्ण भावना भावित है, और उसको कृष्ण से अलग करेंगे तो माया होगी। श्री प्रभुपाद की, गंधराज श्रीमद भागवत महापुराण की, जय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। बच्चों की पढ़ाई वाली कथा करूं,
इसके सार्वभौम प्रभु जी की।
की विजिबिलिटी है ज्यादा, इसमें दो रीजन आ रहे हैं, लोगों ने उतवा दिया था, जबरदस्ती लगा दी है, जबरदस्ती लगा दिया था, बच्चों को दबा देते हैं क्या कर देते हैं। पूछा था एक बार, वो कह रहे थे टेप जो है चाइनीज टेप है, 10 रुपये स्क्वायर फीट आती है, रिफ्लेक्शन इसका वो नहीं होता है, 4 रुपये स्क्वायर फीट आती है, बिल्कुल नहीं। देख सकते हैं और उसमें भी पूछ के लगाओ ताकि टिकट हो रहे। पूछ के लगाएंगे ताकि उतरवाए ना, मेरी हमारी बात दो बार उतरवाया, एक बार तो फिर मैंने मना कर दिया कि मैं सुबह मंगल आरती में पूरी खड़ी होती उससे मत लगा, फिर एक ड्यूटी लगा दी। नहीं वही मैंने नोट करी है थी अभी आते हुए, एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही देखा था मैंने, साइड पे था इधर है किसी चीज़ में दिक्कत नहीं लगी, इसलिए मुझे रियलाइजेशन अभी आते हुए और टिकट ठीक लगाओ तो टिकेगा। ठीक आज हम प्रभा जी का मैसेज सेंड करते हैं, कहना क्या होता है कि अपने रिलीजन अपने निकालते हैं, बट ऐसा जो कॉमन मैन के लिए इससे पहले रोज ही वहीं से आते हैं।